ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी के जीवन में शांति की शक्ति, इसका बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में शांति के लिए बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो एक्चुअली में ये शांति है क्या? व्हाट इज दी पावर ऑफ साइलेंस? आज इसी विषय पर हमें एक दिशा दिखाने के लिए, एक सही मायने में शांति है क्या, कैसे हम उसे अपने जीवन में धारण कर सकें, शांति का सत्य स्रोत क्या है, तो ऐसे एक बहुत ही पर्टिनेंट विषय पर आज हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तो करतल ध्वनि से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी के बारे में चंद एक जो उनके अनुभव के और उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालेंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं, और दीदी एक रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के डायरेक्टर हैं। जो भी ब्रह्मा कुमारीज के कार्य होते हैं, वहां का संचालन पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट का आदरणीय दीदी के मार्गदर्शन में होता है। दीदी ने यूनाइटेड नेशंस को में हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था को रिप्रेजेंट किया हुआ है, खास तौर पे फोकस किया है जिसमें शांति, विमेन एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट और यूथ इनिशिएटिव्स के ऊपर। दीदी का अर्ली चाइल्डहुड जो है, वो दीदी का जन्म स्थान पुणे है। 1949 में दीदी पुणे में दीदी का जन्म हुआ एक सिंधी परिवार में, और उसके बाद दीदी की जो पूरा परिवार था इंग्लैंड में माइग्रेट किया, और वहां पर दीदी वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंस में दीदी का एजुकेशन हुआ, और तकरीबन 19 वर्ष की आयु में दीदी वापस भारत में आई, और तब दीदी ने पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बारे में दीदी को पता लगा और दीदी उसके संपर्क में आई, और तब से दीदी की एक बहुत ही सुंदर यात्रा की शुरुआत हुई। दीदी का खास फोकस जो है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज और पीस और यूनिटी, ग्लोबली उस पर फोकस रहता है दीदी का। विमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स पर दीदी का काफी रहा है, कार्य रहा है। दीदी के काफी अचीवमेंट्स हैं, उसमें से खास कुछ जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल प्रोजेक्ट था जिसमें ओवर बिलियंस ऑफ मिनट्स ऑफ पीस, प्रेयर, मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट के आधार पर ये इकट्ठे किए गए, एकत्रित किए गए, और ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें 129 से भी ज्यादा देशों से पॉजिटिव विजन्स शांति की तरफ, किस तरह से सारे दुनिया में एक तरह से हमारा विजन है शांति की तरफ, इसको एकत्रित किया गया। दीदी एक एडवाइजर है काउंसिल फॉर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स। शी इज एन एडवाइजर एंड प्रमोटिंग इंटरफेथ डायलॉग एंड कोऑपरेशन। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी जयंती दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस टॉपिक पर प्रकाश डालें। ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी जी।
ओम शांति। टॉपिक ही बहुत सुंदर है, शांति की शक्ति। वैसे तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि शांति में शक्ति किस प्रकार से होंगे, क्योंकि वो तो मानते हैं कि एक्सटर्नल पावर कुछ अलग ही है, परंतु हम जानते हैं कि जो आत्मा को शांति की शक्ति पावर मिलती है वो किस तरह से जीवन में काम आती है, और यदि वो साइलेंस पावर को हमने अपने अंदर वो इकट्ठा करके जमा नहीं किया है तो फिर उसकी हालत हम देख रहे हैं कि संसार में क्या क्या चल रहा है। तो पहले तो देखते हैं कि आज कोऑपरेशन की बहुत कमी है, न सिर्फ देशों के अंदर परंतु एक घर के अंदर भी, जो सुख शांति सहयोग से कारोबार चलती रहे, कब कब चलती परंतु कई बार ना भी चलती, ये तो हर एक को मालूम ही है। बहुत कम परिवार होंगे जो कह सकते कि सदा ही हमारे घर के अंदर शांति स्नेह सहयोग चलता ही रहता। फिर दूसरी बात हम देखते, हर एक को जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है, और समस्या आते फिर उस समय अपनी जो डिसर्नमेंट कैपेसिटी है वो परखने की शक्ति, और फिर साथ साथ वो डिसाइड करने की शक्ति, वो निर्णय लेने की शक्ति जितनी भी हमारे पास है, हर एक कहेगा कि यदि उसको हम आगे बढ़ाए सके उससे हमारे को फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि आजकल का समय ऐसा है जिसमें सच क्या झूठ क्या, पहले भी 20 साल पहले हम कहेंगे कि कलयुग था तो मुश्किल बात थी, परंतु जब से AI हमारे जीवन में प्रचलित रहा है, बाकी भी हम कहेंगे कि सच क्या है झूठ क्या है पता ही नहीं चलता। आपके पास कोई वीडियो क्लिप भेजता है, आपको तुरंत क्वेश्चन आएगा, इज दिस रियल और इज दिस AI? तो आप समझ सकते हैं कि जबकि छोटी छोटी बातों में हमारे सामने वो परख शक्ति की कमी रहती है, क्योंकि झूठ इतना बोल बाला हो चुका, और यदि हम परख नहीं पाते हैं तो सही निर्णय भी किस आधार पर हम कर सकते, ये एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न उठता। तो यदि हम खुद इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ा सके, जिसमें हम फिर अपने अंदर की परख शक्ति को हम बहुत रिफाइन करें, तो जल्दी में हम कई बातें परख सकते, और यदि हमारी परख शक्ति क्लियर है तो फिर डिसीजन लेना भी सहज होता। जब तक हर एरिया क्लाउडेड है, ग्रे एरिया कहेंगे, तो उस समय फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, चाहे अपनी पर्सनल जीवन के लिए, चाहे अपने जो कार्य के लिए हम जिम्मेवार है उसके लिए भी, दोनों बातों में ये बात आती है। क्यों? क्योंकि हम जब अपने जीवन के लिए सोचते हैं तो भी उसका जो इम्पैक्ट होता न केवल एक व्यक्ति के ऊपर आता, परंतु हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा पति पत्नी, परिवार, जो भी हमारे बहुत नज़दीक के हैं, उन नज़दीकों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता। तो ये तो मैंने 2-3 बातें ही बताई है जहाँ पर हमें अपनी इंटरनल साइलेंस पावर को बढ़ाने से ये शक्तियाँ हमारे जीवन में बढ़ सकती। और ये भी हमने देखा है कि हर बात में कोई एक अकेला व्यक्ति बहुत ही कुछ कम कर सकता, परंतु जब दो मिलके करते हैं, एक और एक, कहते हैं कि एक और एक सिर्फ दो नहीं है परंतु वो 11 हो जाते, और फिर साथ साथ जितना बड़ा संगठन उसमें जहाँ तक टीम वर्क होती है, एक दो को सहयोग लेना और देना, उसमें हम हर एक के एक एक गुणों को, विशेषताओं को जान करके उस अनुसार उनों के साथ व्यवहार करें, तो आप समझ सकते हैं कि टीम वर्क में कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें भी फिर हर एक की जिस प्रकार की विशेषता है उसको देख करके हम उसको यूटिलाइज करें, उससे भी अपने को भी फायदा, उनों को भी फायदा, कार्य को भी फायदा। परंतु उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है सहयोग के लेने और देने और टीम वर्क में, और उसको हम कहेंगे ईगो। कई लोग हमसे पूछते हैं कि टीम वर्क को हम और अच्छा कैसे बना सकते और उसमें मुख्य ऑब्स्टिकल कौन से आते, तो देख सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति का भी ईगो है टीम वर्क में तो टीम वर्क हो नहीं पाती। तो मैं अपने लिए सोचूं, औरों के ईगो को तो उन्हों को खुद ही डील करना होगा, परंतु मैं अपने लिए सोचूं कि मैं अपनी और ही किस तरह से नम्रता भावना को बढ़ाते जाऊं, ऐसे नहीं टू बी अ डोरमैट, परंतु नहीं, महानता ही निर्माणता है और नम्रता से अनेकों के साथ संबंध रखना, सहयोग का लेन देन करना सहज हो जाता, और नम्रता से जो हमारे अंदर और ऊपर से जो शक्ति आती वो बढ़ सकती, उसे हम खुद भी बहुत आगे बढ़ सकते। तो कहने का मतलब कि साइलेंस पावर जिसको हम कह रही हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक स्थान पर बैठ जाओ और अपने आप ही सब कुछ होता रहेगा, ऐसे भी नहीं होता, अपनी जिम्मेवारी होती चाहे घर में, परिवार में, चाहे कारोबार में, परंतु साइलेंस पावर से, ये तो मैंने आपको तीन बातें बताई, सहयोग का बड़क शक्ति, निर्णय शक्ति, परंतु इस तरह से हम अष्ट शक्तियों को मानते हैं, आठ प्रकार के पावर्स आ सकते। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक तरफ कहेंगे सहनशीलता बहुत ही अच्छी है, परंतु दूसरी तरफ से जो डिफेंस में काम करती हैं उन्हों को लिए सिर्फ सहन करते चलो उससे भी काम नहीं बनता, तो उसके ऑपोजिट आता है द पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। तो उसके लिए भी एक तरफ सहनशीलता, दूसरी तरफ फिर सामना करने की शक्ति, तो दोनों ही शक्तियां हमारी कैपेसिटी जो साइलेंस पावर है उससे हम बढ़ा सकते हैं। कैसे पता चले कि हमको सामना किस समय करना है और सहन किस समय करना है? एक बहुत सिंपल रेड लाइन है, इस तरफ सहनशीलता, तो उसमें हम कहेंगे जो हमारे आपस में है उन्हों की कुछ बातें हम देखते हैं, कुछ ठीक ना भी है, तो हमारा ध्यान यदि उन्हों के दूसरी तरफ जाता कि उन्हों की अच्छाई क्या है, तो फिर उन्हों की छोटी मोटी बातों को तो हम सहन कर लेंगे, परंतु जब कोई बड़ी ऐसी बात आती है जिसके लिए हम कहेंगे कि इस अवगुण से कुछ नुकसान भी हो सकता, तो उस समय हमको सामना करना पड़ता कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, इस बात को ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। एक और तरफ से भी हम देख सकते कि जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो हमारे जीवन के या कार्य के लिए बिल्कुल फाउंडेशन है, उसमें हम ये नहीं कह सकते चलो सहन कर लेंगे, उस समय तो जहां फाउंडेशन आती है, प्रिंसिपल्स आते हैं, उस समय तो हमको ऐसी शक्ति चाहिए जो हम अच्छी तरह से उस बात का सामना कर सके। और दूसरी तरफ जब चॉइस की बात आती है, इस समय ये करें या उस समय ये करें, तो इफ इट्स अ चॉइस, और यदि मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, तो फिर नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि आप मेरी बात को भी स्वीकार करेंगे या ना भी करें, इट्स ओके, परंतु वो है पर्सनल चॉइस की बातें, उसमें हमें कुछ फेस करने की बात नहीं है। यदि उस समय हमने अपने को एडजस्ट कर लिया, कोई हर्जा नहीं, परंतु जहां कोई प्रिंसिपल्स आते हैं उसमें एडजस्टमेंट की बात नहीं होती है, आई हैव टू बी फर्म ऑन माई प्रिंसिपल्स। तो हर बात में आप देखेंगे कि जीवन में जिसके अंदर वो साइलेंस शक्ति है उसको वो बात समझ में आती है कि मेरा रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो साइलेंस पावर क्या है? उसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल संकल्प न करें, क्योंकि मानव का स्वभाव है संकल्प करना, और ये एक हमारी नेचुरल आदत होती। और यदि आप कहो कि मन को बिल्कुल मुझे शांत कर देना है, कैसे भी करके मुझे उसको दबा करके संकल्प नहीं करना है, वो तो गलत ही होता, और इनफैक्ट कोई सहज भी नहीं होता, बहुत कठिनाई भी आती है। तो राजयोग में हमें जो दो बातें शिक्षा मिलती, एक तो ज्ञान, अपनी अच्छी तरह से पहचान कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर किस प्रकार के फैकल्टीज है, और दूसरा सर्वशक्तिवान कौन, जिसके साथ हम संबंध जोड़ के, जिसके आधार पर हम वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन है। तो ये दो बातों को जानने से कदम कदम पर हम वो शक्ति अपने में भर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो पहले तो खुद की पहचान, वो तो आपको मैं समझती क्लासेस मिले ही होंगे, तो उसमें मन बुद्धि संस्कार, संस्कार जो हमारी इम्प्रिंट्स बनी हुई है अपने बहुत काल के एक्शंस के द्वारा, तो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जिसको कहते हैं। तो कुछ समय पहले हम मानते थे कि 7 वर्ष की आयु तक जो भी हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं उसको हम बदली नहीं कर सकते। आज के समय साइंस ने प्रगति की है और साइंस ही बताती है कि जो ब्रेन पैटर्न्स है ये प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी इज पॉसिबल, चेंज इज पॉसिबल। तो जो हमारी ऐसे आदतें हैं, क्योंकि एक बारी काम करो ठीक है, दूसरी बारी वही काम करो, तीसरी बारी वो एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है। उसमें कई अच्छी आदतें भी हो सकती, आपको एक्सरसाइज करने की आदत है, सवेरे उठने की आदत है, ये तो आपके फायदे की बातें हैं, आपका भोजन पर कुछ डिसिप्लिन है, ये भी एक आदत बन जाती, वो भी एक अच्छी बात है। परंतु उस बीच में कई और आदतें भी आ जाती जो इतने अपने लिए भी या समाज के लिए भी, संगठन के लिए भी नुकसानकारक है। तो एक तो सब्सटेंस अब्यूज, तो वो तो आप जानती ही हैं, मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करती। तो सब्सटेंस अब्यूज की जो आदत पड़ जाती उसको समाप्त करना सब कहेंगे कि सहज नहीं होता, परंतु ये भी देखा गया है जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, एक तो ज्ञान जिसकी जानकारी हर बात में, और दूसरा फिर योग मेडिटेशन, जिस आधार पर हम वो कनेक्शन जोड़ के वो शक्ति प्राप्त कर सकते, तो उसमें सब्सटेंस अब्यूज में भी जानकारी और फिर साथ साथ शक्ति, उन दो बातों से ये देखा गया है कि लंदन में आप समझ सकते हैं कि जब हमने ये कार्य आरंभ किया था 1969 में, तो उस समय तो इट वॉज अ टाइम ऑफ हिपीज, तो उस समय ड्रग अब्यूज शुरू हुआ। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो उस समय ड्रग्स का कुछ वर्णन ही नहीं था, इट वॉजंट ऑन द सीन एट ऑल। परंतु तुरंत ही जैसे ही 70s शुरू हुआ, तो उस समय मैंने देखा कि नौजवानों के लिए एक ये बहुत बड़ी समस्या शुरू हो गई, जिसको शुरू में इतने लोग पहचान नहीं पाते थे। फिर जब मैं भारत में आती रही, मैंने देखा कि भारत में भी ये बात बहुत बढ़ गई है, और अभी तो उसका तो आप जानते ही हैं। तो उसमें भी जिस घड़ी परमात्मा की शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है, तो चाहे वो सिगरेट्स हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, तुरंत ही आंतरिक वो शक्ति आती जो उस बात से छूट सकती और वापस नहीं वो आदत लौट के आती। कई लोग एक वर्ष, पांच वर्ष तक कुछ आदत छोड़ते, फिर वो बातें आ जाती। परंतु अपने पास जो आजकल डी एडिक्शन कैंपेन का बहुत ही जबरदस्त कार्य चल रहा, उसकी तो बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स है, परंतु मैं अपना एनेक्डोटल अनुभव बताती हूँ कि जो हमारे पास नौजवान आते थे, पहले तो उनको योग शब्द का भी मालूम नहीं होता था, समझते थे योग इज हठ योग। फिर उनको बताते थे कि देयर इज अनदर टाइप ऑफ योग ऑल्सो, राज योग, मेडिटेशन। तो फिर वो इंटरेस्ट लेते थे, हम मेडिटेशन सीखे, फिर उनको खुद ही, हम कोई उनसे पूछते नहीं थे कि आपका क्या आदतें हैं, परंतु 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो खुद ही आकर के बताते थे कि पहले ये हमारी आदत थी और अभी छूट गई है। परंतु फिर जितना समय वो योग अभ्यास करते रहते, और कई तो ऐसे हैं जो 50 इयर्स से, लंदन में फर्स्ट सेंटर खोला था आउटसाइड इंडिया इन 1971, अभी ऑस्ट्रेलिया को भी 50 इयर्स हो गए, तो वहां पर भी मैं कल ही वहां से वापस लौटी, उनका 50 इयर्स सेलिब्रेशन था। तो कई मुझे मिले जिन्होंने उन दिनों में लंदन में अपना 7 डेज कोर्स किया, और आज तक भी 50+ इयर्स लेटर उनकी जीवन बिल्कुल सही मार्ग पर चल रही है, इतना तक जो वो अनेक औरों की भी सेवा करके, सेंटर स्थापन करके वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस ही वहां ऑस्ट्रेलिया की सेवा कर रहे हैं। अपनी यहाँ पर जो दीदी निर्मला थी, कहीं शायद पहले उनसे मिले होंगे, परंतु उन्होंने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की, परंतु अभी तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस ही संभाल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि थोड़े समय के लिए आदत छूटे वो अलग बात है, जीवन भर के लिए 50+ इयर्स तक भी वो आदत कोई छूटे, ये तो परमात्म शक्ति है। परंतु सब्सटेंस अब्यूज को छोड़ो, हर एक के अंदर अनेक प्रकार की आदतें हैं जो हम चाहते हैं कि इससे हमारा छुटकारा हो। फॉर एग्जाम्पल क्रोध, आप कहेंगे कि डिफेंस के लिए क्रोध जरूरी है, मैं कहेंगे बिल्कुल नहीं। कारण, जिस घड़ी इंसान क्रोध के ऊपर वशीभूत होता, तो उनका निर्णय कभी गलत भी हो सकता, राइट नहीं हो सकता। तो चाहे डिफेंस का कार्य हो, चाहे कोई जीवन का सिंपल कार्य हो, क्रोध एक अग्नि है जिसमें हमारी समझ शक्ति काम नहीं कर सकती। और क्रोध के लिए तो कहेंगे ये एक हमारी आदत है, क्या करें, ये आदत है। तो चाहे क्रोध है, चाहे मोह है, चाहे लोभ है, चाहे अहंकार है, कोई भी बात है, ये भी एक एडिक्टिव बिहेवियर्स की निशानी है। शुरू हुआ, आप उसको कुछ शक्ति लेकर के चेंज करो तो हो सकता, अंदर शक्ति नहीं है तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं शुरू में समझती थी कि जैसे आयु बड़ी होती जाती है तो क्रोध तो अनुभव से इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है और वो बढ़ता नहीं होगा, और बड़ी आयु में उसका स्वभाव में कुछ शायद परिवर्तन होगा, करेक्ट? नॉट करेक्ट, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो क्रोध की आदत है उसको यदि कुछ अच्छी तरह से उसको कंट्रोल ना कर पाओ, तो एज भी बढ़ती जाएंगी, क्रोध भी बढ़ता जाएगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। लोभ, जिसके अंदर लोभ है क्या अपने आप ही चला जाएगा? अपने आप तो अपने आप आ गया, क्यों? क्योंकि जब आत्मा कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो ये सब बातें आ जाती। केयरलेसनेस, लेजीनेस, लिस्ट तो लंबी है, मैंने तो थोड़ी सी ही बातें बताई। परंतु जिस खरी ज्ञान की समझ आती, अंदर जैसे कि वो ज्योत जग जाती, तो उस रोशनी से हम समझ सकते हैं कि इन बातों की हमें बिल्कुल जीवन में जरूरत नहीं है, और ही इन बातों के कारण हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में उसका बहुत इंटरफेरेंस हो रहा। और फिर साथ साथ योग लगाते हैं सर्वशक्तिवान के साथ, तो वो जो हमें शक्ति प्राप्त होती, हम अपनी ही जो हैबिट्स है, पुरानी आदतें हैं, कोई प्रकार के भी इंटरनल एडिक्टिव बिहेवियर है, उन बातों को हम चेंज ला सकते हैं। तो ये है साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। परंतु साइलेंस पावर हमारे में कैसी आई? आप देखेंगे कि जब कोई बात पर बहुत ज्यादा चिंतन चलता, ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई, व्हाट, इफ, बट, व्हेन, इन छोटी छोटी शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, क्यों, क्या, कैसे, लेकिन परंतु इनों का जो विस्तार है बहुत लंबा चलता, और स्पीड संकल्पों की बहुत फास्ट चलती। किसी भी बात में, कोई फैक्चुअल बातें की बात में नहीं कह रही हूं, उसमें क्वेश्चन पूछ करके उसका क्लैरिफिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। परंतु जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपने कुछ बोला, मुझे वो पसंद नहीं आया, आपने तो कितना टाइम लगता है एक शब्द को बोलने में, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मैंने उस बात पर कितना चिंतन किया, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, एक सप्ताह, वही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती, वही सीन मेरे सामने आती रहेंगी, वही संकल्प रिपीट होते ही रहेंगे, जिसका कुछ इलाज ही नहीं, और हमारी एनर्जी और हमारा टाइम कितना उसमें वेस्ट गया, और कितना हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो ये है, ज्ञान द्वारा हम इस बात को समझ सके कि अपने संस्कारों द्वारा संकल्प चलते हैं, सिचुएशंस सबके सामने आती है, परंतु कई उन सिचुएशंस को जल्दी पास करके आगे बढ़ते हैं, और कई फिर उन सिचुएशंस में अटक जाते हैं, आगे चलने में बहुत टाइम लगता, या तो कभी ऐसी भी सिचुएशंस होती जो हम उनसे पार ही नहीं हो पाते हैं, आगे हम बढ़ते ही नहीं हैं। तो संकल्प शक्ति को हम ट्रेन कैसे करें, ये है साइलेंस पावर। आप मानो कि 5 मिनट योग अभ्यास करो, राजयोग, मेडिटेशन, 5 मिनट के लिए आप ये अंदर झांक के देखो, मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि मेरे संकल्प 2 बातों की तरफ जाए, खुद के लिए और ऊपर वाले के लिए। खुद के लिए, जो हम आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, शांति की, सुख की, प्रेम की, सत्यता की, पवित्रता की, इन गुणों को हम जितना सोचेंगे उतना उसका अनुभव हमारा बढ़ता जाएगा। और फिर जिस घड़ी हमारा मन शांत है, शुद्ध है, उस समय हमें परमात्मा का अनुभव सहज होता, क्यों? क्योंकि जब ट्यूनिंग होती है तो ट्यूनिंग का वेवलेंथ सेम होता तो कनेक्शन जुट सकता। हमारे संकल्प यहाँ इस संसार के चल रहे हैं, ठीक है, परंतु परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम भजन करेंगे, गीत गाएंगे, आरती करेंगे, तो भी हमारे संकल्प इस संसार में चल रहे हैं। जब हम अपने संकल्पों को अपने जो आत्मा की आदि स्थिति है, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, उसमें वो रेजोनेंस होता जिसमें परमात्मा की जो वाइब्रेशंस है हम सहज पकड़ सकते, और उसमें जो हमारा कनेक्शन जुटता उसमें हम शक्ति प्राप्त कर सकते। तो जितनी हमारे अंदर शक्ति वो बढ़ती जाएंगी उतना प्रैक्टिकल हम साइलेंस का रिजल्ट्स देख सकेंगे। और उसमें पहले तो संकल्प संसार की बातों में न जा करके ऊंच स्थिति में हम उसको लेके जाएं, और फिर हम देखेंगे कि एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में गैप होता, और वो गैप आप बढ़ाते जाओ। संकल्प मैंने किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, परंतु उसको हम फोकस करें, बुद्धि को वहां पर ठहराएं ताकि वो हमारा अनुभव रहे, सिर्फ संकल्प नहीं रहे, अनुभव रहे। फिर जो बीच में गैप होती है दूसरे संकल्प को क्रिएट करने में, वो गैप के अंदर हम कहेंगे वो साइलेंस आती, एक बहुत नेचुरल तरीके से आती जिसमें आप फोर्स से संकल्प को रोक नहीं रहे हैं, परंतु आपने एनर्जी को राइट ट्रैक पर लाया और फिर संकल्प हमारे वो धीरे धीरे चलते हैं। वो फास्ट संकल्प जो पहले हिसाब यहाँ का जो रहता या जो व्यर्थ संकल्प का चलता, वो बात फिनिश हो गई और अभी एक दूसरे लेवल पर सोच विचार चलता। इस संसार के जो संकल्प चलते हैं मोस्टली रिएक्टिविटी के संकल्प चलते, उसने कहा मैंने बताया, लेन देन चलती रहती है, वो यहाँ की बात। परंतु क्रिएटिविटी की जो शक्ति है वो जबकि यहाँ की बातों को यहाँ रहने दे, वो जो इंटरनल बात है, मुझे जो संकल्प क्रिएट करने हैं खुद के प्रति और अपनी आत्मा की स्थिति का मुझे अनुभव करना है, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट और म्यूजिक और ड्राइंग में नहीं है, परंतु क्रिएशन। तो जो आत्मा अपने श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करती है दैट इज क्रिएटिविटी। उसमें फिर जो श्रेष्ठ संकल्प होते स्पीड बहुत कम होती और वो फ्रीक्वेंसी ऐसे होती जिसमें हम परमात्मा का भी अनुभव कर सकते। कई है यहाँ जो शायद दादी जानकी को मिले थे, मेरा भाग्य था कि दादी की जानकी के साथ हमारा बहुत बचपन से संबंध रहा, परंतु 40 वर्ष तक हम दादी के साथ साथ रहे लंदन में। दादी फिर अभी 2020 में ही 104 ईयर्स की एज पर उड़ के गई, परंतु दादी की मानसिक शक्ति ऐसी थी जो संकल्प करती थी प्रैक्टिकल वो होता था, जो संकल्प, और उसके तो थे ही शुद्ध संकल्प। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति कितनी है वो हमने प्रैक्टिकल जीवन में देखा भी है और अनुभव भी किया है, परंतु ये आप भी अनुभव कर सकते हैं कि आप अपने संकल्प के क्रिएटर हो। सिर्फ रिएक्ट करने की बात नहीं है, और इनफैक्ट उसने किया, मैंने किया, एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा, इट्स एंडलेस, कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसने कुछ किया, कुछ बोला, परंतु मैंने अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखा और जो मेरा कंसिडर्ड रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल उस बात का हल हो जाता, प्रॉब्लम आने ही नहीं देता, सोल्यूशन बन जाता तुरंत ही। एक्शन रिएक्शन करते जाओ, कोई प्रॉब्लम है, बढ़ती जाएंगे, जो हम संसार की हालतें देख ही रहे हैं। वॉर्स कैसे शुरू होते, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन से आई वोंट नेम नेम्स, आप समझ सकते हैं कि कहां की कहानियां ये चल रही है। परंतु हमारा रिस्पॉन्स कुछ अलग ही प्रकार से हो, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर हो, उसमें आपको खुद ही पता चलेगा साइलेंस पावर हमारी कितनी इंटरनल पावर को बढ़ा सकती है। तो साइलेंस पावर है एक तो अपने मन के संकल्प को कंट्रोल करना, दूसरा अपने संस्कारों को मैनेज करके उन्हों को श्रेष्ठ सुंदर बनाना। और पावर कहाँ से आती, सर्वशक्तिवान से। जितना हमारा कनेक्शन वो जुड़ा हुआ होगा वो शक्ति आती ही रहेंगी। उसमें आपके संकल्प और अधिक क्लीन होते जाएंगे, शुद्ध श्रेष्ठ बनते जाएंगे और आपके जीवन की दिशा श्रेष्ठ बनती जाएंगी। परंतु जो भी कार्य आप उठाएंगे देश के लिए, चाहे अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, वो भी और श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो टोटल है संकल्पों को पहचानना कि नेगेटिव संकल्प क्या है, उसको तो मुझे स्टॉप करना ही है, उससे तो जीवन में बहुत दुख आ जाता और बहुत बीमारियां भी प्रकट होती है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो माइंड को पॉजिटिव करना तो बहुत ही आवश्यक है, ये तो बाहर के संसार वाले भी कहेंगे, परंतु हम कहेंगे न सिर्फ पॉजिटिव सोचना परंतु श्रेष्ठ सोचना, शुद्ध सोचना, वो अलग चीज है। शुद्ध संकल्प और पॉजिटिव संकल्प में अंतर है। तो शुद्ध संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें। मेडिटेशन द्वारा वो हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, परंतु प्रैक्टिस जीवन भर के लिए फिर वो हमारी एक नई आदत हो जाती। कोई भी चीज को देखो, 4 व्यक्ति अलग अलग अपना अनुभव करेंगे और अपने अनुभव से उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा, राइट? तो मुझे रिस्पॉन्स क्या करना है, मुझे अपना शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर रिस्पॉन्स करना है। तो मेरा रिस्पॉन्स श्रेष्ठ होगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेंगी नहीं, परंतु प्रॉब्लम का हल होता रहेगा। तो मानो कि आप योग करते हो, परमात्मा की याद में बैठते हो, तो उस समय तो पहले संकल्प श्रेष्ठ आप बनाते रहो, परंतु वो भी शांत होते जाएंगे और आपका अनुभव अधिक होता जाएगा। मैंने दादी जानकी को क्यों याद किया, क्योंकि वो 12 वर्ष की आयु में भारत के जो 4 धाम है उसका चक्कर लगाया था अपने बाप के साथ, और वो जिन साधुओं और संतों से मिलती थी उनसे एक प्रश्न पूछती थी, आप मुझे बताओ आपको परमात्मा का अनुभव क्या है। वो चुप हो जाते थे, क्योंकि वो जब शास्त्र में ये बात है, फलाने में ये बात है, वो कहती प्लीज आप मुझे ये बताओ आपका अनुभव क्या है, वो नहीं बता पाते थे। तो उस समय ही उन्होंने सोचा कि मुझे और कोई अलग प्रकार की खोज करनी होगी। फिर तो कुछ वर्षों के बाद वो ब्रह्मा बाबा से मिली और उनको वो अनुभव हुआ कि परमात्मा किस तरह से ज्योति प्रकाश है। तो यदि हम भी आज चाहते हैं साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल, तो जीवन में अनेक प्रकार के फायदे, जैसे मैंने कुछ कुछ बातें सुनाई, परंतु प्रैक्टिकल मुझे खुद का अनुभव हो कि मैं आत्मा क्या हूं, कौन हूं और परमात्मा कौन है, उस सत्यता के खोज में यदि हम जाते हैं। क्यों, कहीं तो कहेंगे कि जब हम 60 वर्ष की आयु तक पहुंचे तब हम इन बातों पर विचार करेंगे, परंतु कईयों को, जिनों को ये चाहना है कि मुझे अंदर की शक्ति को बढ़ाना है, तो कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा तो मुझे शक्ति नहीं मिलेंगी, दैट्स अ फैक्ट, राइट। क्यों, क्योंकि मनुष्य खुद की स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी कितनी क्वालिफिकेशंस हो, परंतु स्थिति मनुष्य की कभी कैसे कब कैसे, और एक मनुष्य कितने लोगों को शक्ति अपनी दे सकता, कुछ कुछ को दे सकेगा, सबको तो नहीं दे सकेगा, और एक को सदा वो देता रहे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यदि हम चाहते हैं कि अंदर हमारी स्थिति शक्तिशाली हो, जिसमें हमें हर प्रकार की पहचान हो, सत्यता क्या है, झूठ क्या है, इन सब बातों की हमारी शक्ति अंदर काम कर सकती, परंतु वो कहाँ से मुझे मिलेंगे, सर्वशक्तिवान से। तो उसको जानना पहचानना बहुत आवश्यक है। तो जब हम अपना संबंध उसके साथ जोड़ते हैं, तो सर्वशक्तिवान से हर एक के लिए there's more than enough, और मेरे लिए इट्स इन्फिनिट, एंडलेस, जितनी मैं लेने चाहूं मैं ले सकती, सिर्फ संबंध जोड़ना होता। परंतु ये भी आपको मालूम है, यदि आप वायर को ज्वाइन करने चाहते हो टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ पावर, पहले तो उसका रबर केसिंग वायर से आपको उतारना पड़ता। अब वो रबर केसिंग इंसुलेशन को न उतारो और कहो कि अपने आप ही एनर्जी फ्लो हो, आप अटक जाएंगे, नहीं चलेगा। तो आपको तो पहले वो केसिंग इंसुलेशन उतारनी है, तो वो कनेक्शन बनेगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी का फ्लो होगा। तो ये जो देह है, ये है इंसुलेशन, वो आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में, वो एनर्जी लेने में वो मुश्किलात आती है, वो उसका ब्लॉक बन जाता। तो आत्मा की पहचान क्यों चाहिए, एक तो वो मेरा आदि स्वरूप है, रियल आइडेंटिटी है। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस आजकल संसार में बहुत चल रहा है, माय आइडेंटिटी इज नॉट कनेक्टेड विथ माय बॉडी, माय आइडेंटिटी इज नॉट कनेक्टेड विथ माय पोस्ट, माय पोजीशन, माय ऑक्यूपेशन, माय आइडेंटिटी इज समथिंग सेपरेट। आत्मा की जो आइडेंटिटी है वो ज्योति स्वरूप, जब हम इसको 2 मिनट 5 मिनट इससे अपने को अलग करके, इसको भुला करके अपने आत्मिक ज्योति स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ही हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है, तो ही हम अनुभव कर सकते हैं कि वो परमात्मा कौन है। कितने वर्षों से किसने किस प्रकार की, किसने किस प्रकार की भक्ति की होंगी, परंतु फिर भी वो अनुभव दूर रहा, क्योंकि ये देह के बातों में हम आ जाते हैं और देह को भुलाना सहज नहीं है, क्योंकि इसका संबंध मेरा जन्म लेने से पहले ही बन चुका था। जन्म तो बाद में लिया, आत्मा उससे पहले ही गर्भ में प्रवेश अपने छोटे फीटस में आ गई, तो इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। परंतु जितना हम समझते हैं और उतना हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें वो फीलिंग, वो अनुभव होता कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप किस प्रकार की आत्मा हूँ, और उस स्थिति में स्थित होने से परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुट जाता और एक बहुत नेचुरल तरह से हम उनका अनुभव कर सकते और उनके द्वारा वो शक्ति हम प्राप्त कर सकते। मैं क्या सोचती कि 5 मिनट के लिए यदि किसको इन बातों के लिए कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते, और फिर 5-7 मिनट के लिए हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। तो फर्स्टली यदि कोई क्वेश्चन है, आत्मा परमात्मा संबंध जोड़ने की बात का, तो पूछ सकते। साइलेंस पावर एक्सपेरिमेंट करने से अनुभव होती, दूसरे का अनुभव सुनने से शायद इंस्पिरेशन मिल सकती, परंतु हम खुद अनुभव नहीं कर सकते। जब मैं खुद इस बात का एक्सपेरिमेंट करूं, प्रैक्टिस करूं, तो ही हमें वो अनुभव हो सकता। एवरीथिंग क्लियर? नो क्वेश्चंस और टू मेनी क्वेश्चंस? यदि खूब सारे प्रश्न है, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि जैसे आप और आगे बातें सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, वो क्वेश्चंस का हल आपको मिलता रहेगा। परंतु लगता है कि अभी किसको संकल्प नहीं आ रहा है प्रश्न पूछने का। पीछे वाले प्रश्न पूछने, प्रहलाद के साथ इन बातों का क्या आप हाथ खड़ा करें, परंतु माइक आप दियो उनको, माइक दियो उनको। हाँ, मैंने समझा। आप सोचो कि जो अपने शास्त्रों की कहानियां है, खूब सारी कहानियां है, इतने 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 में शास्त्र है, परंतु एक ही बात को मैं उठाएंगी। प्रहलाद का जो संबंध था परमात्मा के साथ, वो सच्चे दिल का संबंध था। तो जो हम अभी बातें कह रहे हैं, उसके कनेक्शन की ही बातें हैं। प्रहलाद का कनेक्शन ऐसे था, जो वो मानता था कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा का बेटा हूँ। मैं कहेंगी कि न केवल एक प्रहलाद की बात है, हम सब के लिए ये बात है कि हम सब परमात्मा की संतान है, चाहे भाई है चाहे बहन है, सब उनों की ही संतान है। वो एक क्रिएटर और हम सब क्रिएशन, वो एक पिता और हम सब एक ही परिवार, और न सिर्फ वो पिता परंतु वो मात पिता, परमात्मा के लिए कहते हैं मात पिता, मात पिता सखा स्वामी, हर प्रकार का संबंध उस एक के साथ। तो यदि हम अपने को आत्मा मानते हैं तो सच्ची दिल से हम परमात्मा को याद करके उससे न सिर्फ शक्ति ले सकते हैं, परंतु वो जबकि हमारा साथी बन जाता, सदा के लिए वो हमारी रक्षा करते, तो परमात्मा किस तरह से उसकी रक्षा करते रहे वो तो सारी कहानियां आप जानते हो। परंतु हम भी जिस भी सिचुएशन में है, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होंगी, आप सोचो कि आप किसको याद करते हो। फर्स्ट आपके मन में कौन आता? अभी मानो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले मैं किसको याद करेंगी? डॉक्टर को याद करेंगी? मैंने दादियों को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, उन्होंने पहले मनुष्य को नहीं याद किया, उन्होंने पहले परमात्मा को याद किया। तो परमात्मा ने उन्हों को शक्ति दी और जो भी उस समय बीमारी थी आदाद, उनसे भी पार लेके गए। दादी जानकी 104 इयर्स तक सेवा करती रही, न सिर्फ जीती रही परंतु सेवा करती रही। तो ये शक्ति कहाँ से आई? उस एक से। तो प्रहलाद तो एक की ही कहानी आती, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा एक का होता, परंतु वो रियलिटी तो अनेकों की होती। तो आप सब भी प्रहलाद बन सकते, बनने तो क्या आप है ही, सिर्फ पहचान की बात होती। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं समझती मेजॉरिटी तो उस बात को स्वीकार करते ही होंगे, परंतु वो मुझे अनुभव हो, वो प्रैक्टिकल मेरा रिलेशनशिप हो, न सिर्फ थियोरी और फिलॉसफी के आधार पर परंतु एक्सपीरियंस के आधार पर, वो तब होगा जबकि आप इससे न्यारे होकर के, देह से न्यारे होकर, गीता के जो शब्द है, देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग, सर्व धर्मों का त्याग कर मुझ एक को याद करो। तो यदि हम उस बात का अभ्यास करेंगे तो रियलिटी में हमें वो अनुभव होगा कि कैसे वो न हमारा केवल शिक्षक है, हमें शिक्षाएं तो दे रहा है अपने जीवन के लिए, परंतु हमारा रक्षक भी है, कदम कदम पर रक्षा करने वाला। लास्ट क्वेश्चन, आप सोचो, मुझे जब कनेक्शन जोड़ने की बात होती तो मैं सब तरफ तो कनेक्शन नहीं जोड़ेंगी ना, मैं जोड़ेंगी एक स्थान पर। तो जब मुझे ये पहचान है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप अति सूक्ष्म, और गीता के वर्णन अनुसार इस सृष्टि के 5 तत्वों से भी पार, सूर्य चांद चंद्रमा से भी पार, मेरा घर है ब्रह्मलोक, जहाँ इस संसार की ज्योत नहीं परंतु वहाँ ब्रह्म तत्व की ज्योत नजर आती। तो जब हम बुद्धि को यहाँ घुमाते हैं, हमारा संबंध नहीं जुटता रियलिटी। जिस समय हम अपने को देह से न्यारे उस परम धाम में परमात्मा के निवास स्थान को, बुद्धि को वहां ले जाते, तो कनेक्शन जो जुटता है प्रैक्टिकल उस ज्योति बिंदु शिव निराकार से, तो वो हमारा प्रैक्टिकल मात पिता सखा स्वामी बंधु कैसे है, और किस तरह से सर्वशक्तिवान से हमें शक्ति प्राप्त करती, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। मैं सजेस्ट करेंगी कि आप ज्यादा इन बातों में फिलॉसफी के हिसाब से न सोचें, परंतु जो एक्सपेरिमेंट की बात है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो आपको खुद ही उसका एक्सपीरियंस होगा। मुझे मालूम है एक बार प्रश्न शुरू होते तो उन्हें एक और भी आते, परंतु मैं चाहती हूँ कि अभी जो 5 मिनट है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल उसका अनुभव करें। तो मैं अपने संकल्प सुनाती जाएंगी और मैं सजेस्ट करेंगी कि जो ज्योति बिंदु है, न सिर्फ ब्रह्मा बाबा का चेहरा परंतु ज्योति का जो बिंदु है वहां पर आप अपनी आंखों को एकाग्र करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हायर कॉन्शियसनेस हमारी चलते फिरते कोई भी कार्य करते सदा रहे। तो वो कारोबार तो आंखें खोल के ही करना होता, तो ये एक ट्रेनिंग होती है। आंखें खुली है, एकाग्र है, परंतु बुद्धि न सिर्फ यहाँ है, परंतु बुद्धि हमारी उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। इस देह के अंदर प्रकृति के बीच में मैं हूं आत्मा ज्योति स्वरूप। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। इस स्व की धर्म में स्थित होकर मैं निराकार ज्योति स्वरूप शिव कल्याणकारी पिता को याद करते उसके साथ मैं संबंध जोड़ती हूँ। शांति का सागर, कल्याणकारी शिव, सर्वशक्तिवान, बुद्धि उस ज्योति स्वरूप पिता में एकाग्र होती, और सर्वशक्तिवान से सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति आत्मा के अंदर भरती जाती। आत्मा अपने आदि स्वरूप जिस स्वरूप में परमात्मा की संतान के नाते से शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सत्य स्वरूप पवित्र स्वरूप आनंद स्वरूप है। आत्मा वही अनुभव करती है। इसी अनुभव को अपने पास कायम रखती अब वापस इस संसार में आती अनुभव वो स्थिति साथ में लाते, तो हमारे मन, वचन, कर्म, इन गुणों के आधार पर ही चलते। ओम शांति। हम ये संकल्प रखते कि जो भी आप यहाँ अनुभव करेंगे वो अनुभव आप अपने साथ ले जाएंगे, तो आपके जीवन में भी उसकी प्राप्ति और जो भी आपके संबंध संपर्क में आते उन्हों को भी प्राप्ति, परंतु आपके कार्य के लिए भी आपको अंदर एक और शक्ति स्थिति प्राप्त करके आपको काम आएंगे। ओम शांति।